لفظ ہے جہالت اور ایک لفظ ہے جاہلیت۔ یہ دونوں الفاظ بہت کثرت کے ساتھ استعمال کیے جاتے ہیں۔ جو پیغمبر اکرم کا زمانہ تھا جس میں پیغمبر اکرم مبعوث بر رسالت ہوئے، عام طور پر اس کو لفظ جہالت سے تعبیر نہیں کیا جاتا، ہم یہ کہیں کہ جہالت زدہ معاشرہ، بلکہ اس کے لیے جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے وہ ہے جاہلیت کا معاشرہ، یعنی ایک جاہلیت کا ایک رواج تھا اس زمانے کے اندر۔ تو کوئی تو فرق ہوگا لفظ جہالت کے اندر اور لفظ جاہلیت کے درمیان۔ دیکھیے، جہالت کا جہاں تک معاملہ ہے، ایک ہمارے ذہن کے اندر یہ بات آتی ہے کہ جاہل وہ شخص ہوتا ہے کہ جس کو لکھنا اور پڑھنا نہ آتا ہو۔ یہ بھی ٹھیک ہے، یہ اپنی جگہ پر ایک اس کی تعریف تو ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ صاحب یہ جاہل ہے، جاہل کا مطلب یہ کہ اس کو لکھنا نہیں آتا، اس کو پڑھنا نہیں آتا۔ کیا اسلام نے اس کے خلاف جہاد کیا؟ جواب جی ہاں، بالکل کیا، کیسے نہیں کیا۔ جو پہلی وحی پیغمبر اکرم کے اوپر نازل ہوئی ہے، اس وحی کے اندر پروردگار عالم نے کیا ارشاد فرمایا؟ اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام سے کہ جس نے پیدا کیا، خلق الانسان من علق، جس نے جمے ہوئے خون سے پیدا کیا، اقرا وربک الاکرم، پڑھیے اور آپ کا رب جو ہے بڑا اکرم ہے، عزت والا ہے، الذی علم بالقلم، کہ جس نے قلم کے ذریعے سے تعلیم دی، علم الانسان ما لم یعلم، اور انسان کو وہ سکھایا کہ جو وہ نہیں جانتا تھا۔ تو اگر آپ غور کریں گے، جو پہلی وحی نازل ہو رہی ہے اس کے اندر پڑھنے کا ذکر آ رہا ہے، اس کے اندر قلم کا ذکر آ رہا ہے، پھر سورہ نون والقلم، اس کے تو نام کے اندر قلم موجود ہے، نون والقلم وما یسطرون، نون قلم کی قسم اور اس تحریر کی قسم کے جو لکھیں گے۔ اب آپ غور فرمائیے، یہ لکھنے اور پڑھنے کا تذکرہ کس معاشرے کے اندر ہو رہا ہے؟ اس معاشرے کے اندر کہ جہاں پر لکھنے اور پڑھنے والے افراد 30 سے کم تھے، دیور لیس دین 30، 30 بھی میں زیادہ بول رہا ہوں، احتیاط کر رہا ہوں، ورنہ اس معاشرے کے اندر 30 افراد بھی ایسے نہیں تھے، 27-25 افراد ہارڈلی ایسے تھے کہ جن کو لکھنا اور پڑھنا آتا تھا، یعنی اتنی زیادہ الٹریسی اس زمانے کے اندر تھی۔ اور ایسے معاشرے کے اندر جو پہلا پیغام دیا جا رہا ہے، اس کے اندر لکھنے کا تذکرہ بھی ہو، اس کے اندر قلم کا تذکرہ بھی ہو، اس کے اندر پڑھنے کا تذکرہ بھی ہو، یہ ایک طرح سے اگر آپ دیکھیں تو اگینسٹ دا ٹائڈ سوئم کرنے والی بات ہے، کہ ایک فضا جو بنی ہوئی ہے، اس فضا کے اندر کوئی اور ہی چیز ہے، اور وہ افراد کہ جن کے درمیان پیغام دیا جا رہا ہے، پیغام وہ دیا جا رہا ہے جس کا تعلق لکھنے اور پڑھنے کے ساتھ ہے۔ یہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، بہت آسان ہوتا ہے ایک ایسی بات کہنا کہ جو سوسائٹی کے اندر بہت زیادہ فیمس ہو، جس کی ہوا چلی ہوئی ہے، اسی کی بات کرنا بہت آسان ہوتا ہے، لیکن اس سے ہٹ کر کسی بات کو بیان کرنا یہ اتنا آسان نہیں ہوتا۔ آج کل کے زمانے میں اگر ینگسٹرز کے سامنے پوچھا جائے کہ صاحب آپ کون سا سبجیکٹ لینا چاہتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ ان کے سامنے اگر چوائس دی جائے تو وہ سائنس کو پریفر کریں گے، مگر اگر آپ مشتاق احمد یوسفی صاحب کے بعض مقالات جو انہوں نے خود پڑھے ہیں، بڑے مزاح نگار، تو انہوں نے خود کہا کہ ایک زمانہ تھا کہ جب سائنس کا مضمون وہ لیا کرتے تھے کہ جن کو فلسفے کے اندر اور آرٹس کے اندر داخلہ نہیں ملا کرتا تھا، وہ بھی ایک زمانہ تھا، یہ بھی ایک زمانہ ہے۔ تو کسی زمانے کے اندر کسی چیز کا رواج ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد وہی رواج تبدیل ہو جاتا ہے، جو اسٹینڈرڈز ہیں وہ فرق کر جاتے ہیں، ترجیحات بدل جاتی ہیں، پرائیورٹی لسٹ جو ہے اس کے اندر کوئی چیز اوپر ہوتی ہے وہ نیچے چلی جاتی ہے، جو نیچے ہوتی ہے وہ اوپر چلی جاتی ہے، مگر اس کے لیے ایک گریجول پروسیس ہے۔ اور ایک یہ ہے کہ آپ انقلابی ایک تعلیم دے رہے ہیں جو بالکل اگینسٹ دا ٹائڈ ہے، جس کا کوئی اس وقت معاشرے کے اندر ریسیو کرنے والا نہیں ہے، اور اس کے خلاف آپ نے ایک بات کر دی۔ قرآن مجید کی جو یہ پہلی آیتیں ہیں، یہ وہی کام کر رہی ہیں کہ بالکل معاشرے کی ایک فضا بنی ہوئی ہے، اور اس کے خلاف بات کی جا رہی ہے، پڑھنے کی، لکھنے کی، قلم کی، یہ ساری باتیں وہاں پر ہو رہی ہیں۔ تو قرآن نے، اسلام نے نو ڈاؤٹ اس کے خلاف بھی جہاد کیا، لیکن سوال یہ ہے کہ فرض کیجئے ایک ایسا شخص آپ کے سامنے آئے کہ جس کو لکھنا نہیں آتا، پڑھنا نہیں آتا، تو کیا واقعاً یہ بھی لازمی آئے گا کہ اس کو کچھ بھی نہیں آتا؟ ایسا نہیں ہوتا، اس کو بہت کچھ آ رہا ہوتا ہے، اگرچہ وہ لکھنا نہیں جانتا، وہ پڑھنا نہیں جانتا۔ ایسے افراد آپ کو ملیں گے جو اپنے اپنے شعبے کے بڑے ماہر تھے، اور ان کو اعزازی ڈگریاں اسی وجہ سے دے دی گئیں کہ اگرچہ انہوں نے کوئی فارمل سرٹیفکیٹ یا فارمل ڈگری حاصل نہیں کی، کسی یونیورسٹی کے اندر نہیں گئے، کسی کالج کے اندر نہیں گئے، مگر اس کے باوجود انہوں نے اپنے فن کے اندر اتنی مہارت پیدا کی کہ ان کو اعزازی آنرری ڈگریز دی گئیں کہ صاحب یہ اس بات کے حقدار ہیں کہ ان کو آنر کیا جائے، اس لیے کہ انہوں نے اپنے فن کے اندر، اپنے شعبے کے اندر بڑا کام کیا۔ ایسے افراد آپ کو ملیں گے۔ اس کی مثالیں بھی بہت بن سکتی ہیں۔ انٹرنیٹ کے اوپر آپ کو ایسا جاہل بھی مل جائے گا، یعنی جاہل انورٹڈ کاماز کے اندر، کہ جس کو اعزازی طور پر سرجن کی ڈگری دی گئی، نام میں اس وقت بھول رہا ہوں، لیکن ایسے افراد آپ کو مل جائیں گے جس کے وہ باقاعدہ کالمز بھی لکھے گئے اور سب کچھ ہوا، کہ اگرچہ وہ اسسٹنٹ تھا، ساتھ کھڑا رہتا تھا سرجن کے، मगर साथ साथ खड़े रह रहकर और साथ देते देते उसने इतनी महारत पैदा की कि शायद बहुत बड़े बड़े सर्जन के हाथों के अंदर वो महारत नहीं थी कि जो उसके हाथ के अंदर महारत थी। तो ऐसे केसेस और ऐसे एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे। अब जो बात मैं अर्ज करना चाह रहा हूँ वो ये है कि एक शख्स है जो जहालत ज़दा है और एक माशरा है कि जिसके अंदर जाहिलियत है, इन दोनों के दरमियान क्या फ़र्क है। जो जाहिल होता है उसका वर्क सादा होता है। सादा वर्क से मेरी मुराद ये कि ब्लैंक है, यानी इल्म वहाँ पर नहीं है, लिहाजा वो जाहिल है। अगर इल्म होता तो वो आलिम होता, वो जाहिल ना होता। लेकिन यहाँ पर वर्क सादा है, ब्लैंक पेपर है, आप उसके ऊपर कुछ और लिख सकते हैं। उसके जहल को इल्म से तब्दील करना आसान होता है, इसलिए कि एटलीस्ट वो इस बात को एहसास कर रहा होता है, वो रियलाइज़ कर रहा होता है कि मुझे नहीं आता। जब वो इस बात को रियलाइज़ कर रहा होता है तो आधा इल्म उसके पास होता है कि उसके पास इल्म नहीं है और अब उस जहल को इल्म से उसे तब्दील करना है। एक आमादगी है, एक अंदर से खुद की एक आवाज़ है कि जिसको वो सुन रहा है, लिहाजा इसको एड्रेस करना आसान है। मगर आप पैगंबर अकरम के केस में देखें, उस माशरे के हवाले से देखिए, वहाँ पर आपको कौन शख्स नज़र आता है कि जिसको अबुल हिकम कहा गया। अबुल हिकम किसको कहा जा रहा है? अबुल हिकम का मतलब है फादर ऑफ विजडम। फादर ऑफ विजडम का मतलब हुआ हिकमत का बाप। हिकमत का बाप किसको कहा जा रहा है? उस शख्स को कि जिसको हम और आप सब के सब अबू जहल के नाम से जानते हैं। अबू जहल यानी जहालत का बाप। ये इसको अबू जहल किसने कहा? इसको अबू जहल कहा खुद पैगंबर अकरम खत्मी मर्तबत अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब पैगंबर अकरम ये सवाल करते हैं कि क्या वजह है कि मैं महसूस करता हूँ कि जिस स्पीड से इस्लाम को पेनिट्रेट करना चाहिए था उस स्पीड से ये पेनिट्रेट नहीं कर पा रहा, उसका रिसेप्शन जो है वो स्लो हो गया, तो पैगंबर अकरम के सामने बयान किया गया कि अल्लाह के रसूल अबुल हिकम नहीं मानता। अगर अबुल हिकम आपकी बात को कबूल कर ले तो माशरे के तो बहुत सारे अफराद यही कह रहे होते हैं, चूंकि वो कह रहा है लिहाजा मान लो। एक रिकग्नाइज पर्सनैलिटी एक बात कह रही है तो एज ए एक्सपर्ट ओपिनियन उसकी बात को ले लिया जाए और उसकी बात को कबूल कर लिया जाए। तो पैगंबर अकरम से कहा गया अल्लाह के रसूल आपकी जो बात है उसको अबुल हिकम नहीं मानता, वो जो विजडम का फादर है, वो जो विजडम का बाप है, जो हिकमत का बाप है, वो नहीं मानता, वरना तो आपकी बात ज़्यादा तेज़ी के साथ फैलती। पैगंबर अकरम ने बहुत ही ब्रीफली एक कॉमेंट किया। पैगंबर अकरम फरमाते हैं कि अगर उसको इस्लाम समझ में नहीं आ रहा तो फिर वो सब कुछ हो सकता है, हिकमत का बाप नहीं हो सकता है, उसको अबुल हिकम मत कहो, उसको अबू जहल कहो, इसलिए कि वो कंपाउंड इग्नोरेंस का शिकार है। अब आप ज़रा देखिए कि ये शख्स किस हद तक गया। ये तो फकत एक एग्जाम्पल है, हमें बात को आगे बढ़ाना है, मगर ज़रा सुनिए कि जब जंग बदर के अंदर ये लोग लड़ने के लिए आए थे पैगंबर अकरम से, पैगंबर अकरम हिजरत करके मक्के से मदीना तशरीफ ला चुके हैं, पहली जंग जंग बदर, चढ़ाई करके ये लोग आए पैगंबर अकरम को मदीने में भी डिस्टर्ब कर रहे हैं, और वहाँ पर जब लड़ाई हुई है और अबू जहल मारा गया तो उसने मरते मरते भी क्या जुमला कहा? उसने मरते मरते भी जुमला ये कहा कि जाओ और जाकर मोहम्मद से कह देना कि ज़िंदगी में भी वो शख्स जिससे मुझे सबसे ज़्यादा नफरत थी वो मोहम्मद था, और मरते हुए भी जिससे सबसे ज़्यादा मुझे नफरत है वो मोहम्मद है। पैगंबर अकरम के सामने जब ये बात कही गई तो पैगंबर अकरम ने कहा कि ये फिरौन जो मेरे ज़माने का फिरौन है मूसा के फिरौन से बदतर साबित हुआ, इसलिए कि मूसा के ज़माने में जो फिरौन था मरते मरते उसने तो ईमान का ऐलान किया था, परवरदिगार आलम ने उसके उस ईमान को कबूल नहीं किया। जब मौत बिल्कुल सामने आ गई, रब रूह कब्ज़ होने वाली है, फरिश्ता नज़र आ गया है, अगर ज़िंदगी में इंसान तौबा करे, आप जानते हैं कि तौबा परवरदिगार आलम कबूल करता है, मगर केस ये है कि बिल्कुल मौत का फरिश्ता सामने आ गया, रूह कब्ज़ होने वाली है, उस मौके पर अगर वो ये कहे कि मैं ईमान लाया, इट्स ऑफ नो यूज़, नाउ यू आर लेट। परवरदिगार आलम ने यही कहा, अल आन ए फिरौन, इस मौके पर तू कह रहा है कि मैं ईमान लेकर आया, इससे पहले जो तूने इतना फसाद बरपा किया, इतने झगड़े और इतने जो माशरे के अंदर क्योस तेरी वजह से हुआ, उसका कौन जिम्मेदार है? ये मौका अब तौबा कबूल करने का नहीं है। पैगंबर अकरम ने उसको रिलेट किया, ये सूरह यूनुस के अंदर परवरदिगार आलम ने बयान किया। पैगंबर अकरम ने कहा कि जो मूसा के ज़माने का फिरौन था मेरे ज़माने का फिरौन उससे भी बदतर साबित हुआ, कि वो मरते मरते ईमान की बात कर रहा था, ये मरते मरते भी नफरत और बुग्ज़ ही की बात कर रहा है। इससे भी आप अंदाज़ा करें कि एक इंसान कुफर पर, फिस्क पर, फजूर पर क्या इतना पक्का हो सकता है कि मरता मर जाए और पैगंबर अकरम से नफरत ही का इजहार कर रहा हो? जवाब जी हाँ, ये केस आपके सामने है। इसी से आप अंदाजा करें कि जब पैगंबर अकरम से नफरत इतनी शिद्दत की हो सकती है तो मौला से भी नफरत इतनी शिद्दत की हो सकती है। ऐसे अफराद अगर गए इस दुनिया से, ऐसे बदबख्त अफराद, तो हमें इसके अंदर कोई हैरत नहीं होनी चाहिए। फिर उसने मरते हुए दूसरी वसीयत क्या की? अपने कातिल को कह रहा है अबू जहल कि देखो, मैं दुनिया में एक स्टेटस वाला आदमी था, मर रहा हूं, मेरी ख्वाहिश यह है कि जब मेरा गला काटो तो थोड़ा नीचे से काटना, ताकि नेजे के ऊपर जब मेरा सर अगर बुलंद किया जाए तो वो वाज़े तौर पर नजर आना चाहिए। पैगंबर अकरम ने इस रस्म को क्रॉस किया। पैगंबर अकरम ने कहा कि किसी का सर नेजे के ऊपर बुलंद नहीं किया जाएगा, यह गलत तरीका है कि इस तरीके से नुमाइश लगाई जाए और ये तरीका इख्तियार किया जाए, यह गलत है। मुसलमानों के अंदर इस तरीक़ेकार को फिर अमीर शाम ने वापस रिवाज दिया था, जब अमर इब्ने हुमक खिजाई पैगंबर अकरम के सहाबी का सर काट कर उसने नोके नेजा पर बुलंद किया था। फिर वो सिलसिला चला तो आप जानते हैं कि करबला तक ये सारे मामलात रहे। लेकिन नोट करने वाली बात यह है कि वो आदमी कितना बड़ा जहल का शिकार है कि वो ये कह रहा है कि अभी मैं मर जाऊंगा, मगर मरने के बाद भी मैं इस बात को पसंद करता हूं कि उसके बाद मेरा सर थोड़ा नीचे से काटना, ताकि अगर तुम लोग नेजे पर बुलंद करो तो ऊपर प्रोमिनेंट नजर आना चाहिए कि हाँ, ये अबुल हिकम का सर है या अबू जहल का सर है। ये इसके अंदर जाहिलियत कहां पर है? आप नोट करें कि यहां पर जहल जो है वो कंपाउंड इग्नोरेंस से बदल रहा है। एक है जहल की कैफियत और एक है जाहिलियत की कैफियत। कंपाउंड इग्नोरेंस वो स्टेटस है, जहल मुरक्कब जिसको कहते हैं, डबल जहल, कि जहां पर इंसान अपने जहल की तरफ मुतवज्जे भी नहीं होता, उसको इल्म नहीं होता, मगर उसको ये भी इल्म नहीं होता कि मुझे इल्म नहीं है। एज अ रिजल्ट वो अपने जहल के ऊपर सेटिस्फाइड होता है, वो अपने इग्नोरेंट होने के ऊपर एक सेटिस्फेक्शन अंदर फील कर रहा होता है, क्योंकि वो अपने आप को उस जहल के साथ सबसे बड़ा आलिम समझ रहा होता है। नाउ दिस इज द पॉइंट कि जहां पर किसी किस्म की इंप्रूवमेंट, किसी रिफॉर्म की कोई गुंजाइश है ही नहीं, वो अपने उस जहल की तरफ मुतवज्जे हो तब तो आप उसको मुतवज्जे कर सकते हैं इल्म की जानिब। आप मुझे एक बात बताइए, आपको पैर में दर्द हो रहा है तो आप डॉक्टर के पास जाएंगे, आपको सर में दर्द हो रहा है तो आप मेडिसिन लेंगे, आपको हाथ में दर्द हो रहा है तो आप जाएंगे इलाज करवाएंगे, रेमेडी की तरफ जाएंगे। लेकिन अगर आपको दर्द ना हो जबकि प्रॉब्लम वहां पर मौजूद है तो फिर क्या होगा? वो साइलेंट किलर है, वो तो साइलेंट किलर है। ब्लड प्रेशर हाई हो गया, शूट कर गया, पता ही नहीं चला। अगर पता चलता तो ब्लड प्रेशर चेक करते, दर्द हो रहा होता तो मेडिसिन लेते और उसके बाद इलाज करवाते, हॉस्पिटल में एडमिट होते। लेकिन अगर ब्लड प्रेशर शूट कर गया है और ये पता ही नहीं चल रहा कि कितना तबीयत के अंदर खराबी वाला मामला हो गया है, तो आप इंसाफ से मुझे बताइए वो शख्स क्या डॉक्टर के पास जाएगा? ये है वो स्टेटस कि जिसके अंदर एक फॉल्स सेंस ऑफ वेलबींग ईजाद हो जाता है कि अपने आप को ये समझो कि तुम बहुत अच्छे हो जबकि अंदर गड़बड़ ही गड़बड़ चल रही है। एज अ रिजल्ट उस प्रॉब्लम को वो एड्रेस नहीं कर पाता। जहालत और जाहिलियत के इस फर्क को मजीद समझने के लिए मैं आपके सामने तीन चार मिसालें अर्ज करता हूँ। तारीख इस्लाम किताब का नाम है, ऑथर हैं हजरत अल्लामा सैयद अली नकी साहब अल्लाह मकामहू, जो अल्लामा नक्कन साहब आमतौर पर जिनको कहा जाता है, बड़ी अजीम शख्सियत। इस किताब के स्टार्ट ही के अंदर इसका टॉपिक क्या है? सीरत रसूल, पैगंबर अकरम की सीरत। टेक्निकली सीरत और तारीख के दरमियान कुछ फर्क होता है, मगर उनकी किताब का नाम तारीख इस्लाम ही है। उस किताब के अंदर उन्होंने जाहिलियत को एलोबरेट करने के लिए कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं, जरा इन एग्जाम्पल्स को सुनिए और फिर उसके बाद जरा ये देखिए कि इमाम हुसैन के जमाने में इसी जाहिलियत का रिवाइवल कैसे हो रहा था। उसी का अहया, यानी एक चीज जिसको पैगंबर अकरम ने बड़ी मुश्किल से मार्जिनलाइज किया है, साइडलाइन किया है, उन स्टैंडर्ड्स को तब्दील किया है, और इमाम हुसैन के जमाने में एक मरतबा फिर उनको रिवाइव करने के लिए जो कोशिशें हो रही थी वो किस लेवल के ऊपर पहुंच चुकी थी, जरा सा इसके ऊपर गौर कीजिएगा। जाहिलियत और जहालत, जहालत के ऊपर बात हो चुकी, अब आइए जाहिलियत। एक बात बताइए, जेनरोसिटी अच्छी चीज है या बुरी चीज है? अच्छी चीज है, सखावत तो अच्छी चीज है। अच्छा, अगर किसी को यही नहीं पता कि सखावत बुरी चीज है तो ये क्या है? इसको हम कहेंगे जहल, कि वो जाहिल है। लेकिन अगर किसी को पता है कि सखावत अच्छी चीज है तो ये जहल तो नहीं है, ये तो इल्म है ना, दुरुस्त है। आइए आगे बढ़ते हैं। ये बताइए, शुजाअत, किसी का बहादुर होना, ये अच्छा है या बुरा है? ये तो अच्छा है, बुरा तो नहीं है। अगर किसी को ये पता है कि शुजात अच्छी चीज है तो ये उसका इल्म है ना, जो उसके पास है, इसको फिर हम जाहिल तो नहीं कहेंगे, जहालत का शिकार तो नहीं है ये। उसको पता है कि सखावत अच्छी चीज है, जेनरोसिटी। उसको पता है ब्रेवरी, शुजात, ये अच्छी चीज है, ये अच्छी सिफत है, एक अच्छी वर्चू है कि जो एक इंसान के अंदर पाई जाती है। उसको मालूम है, उसको हम जाहिल तो नहीं कहेंगे, उसको हम आलिम कहेंगे, साहिब इल्म है, इतना उसको पता है, दुरुस्त है। तीसरी चीज गैरत, हम ये कहें कि ये बड़ा गयूर है, बड़ा गैरतमंद है। गैरत अच्छी होती है बुरी होती है? इंसान को गैरतमंद होना चाहिए, गयूर होना चाहिए। अच्छा, किसी को पता है, ये बात मालूम है कि हाँ गैरत अच्छी चीज़ है, हम इसको जाहिल तो नहीं कहेंगे, उसके पास इल्म है। अब तीनों मिसाल आपके सामने, शुजात जेनरोसिटी, शुजात ब्रेवरी, शुजात के साथ सखावत जेनरोसिटी, और फिर तीसरी चीज़ गैरत, किसी का गैरतमंद होना। ये तीनों चीज़ें अच्छी हैं। अच्छा, इनके मुकाबले पर क्या है? शुजात के मुकाबले पर है बुजदिली, कवर्डनेस, ठीक है। जेनरोसिटी, उसके मुकाबले पर है माइजर होना, किसी का बखील होना। गैरत के मुकाबले पर है बेगैरत होना। अच्छा, मुझे वाकई नहीं पता कि गैरत को अंग्रेजी में क्या कहते हैं। जैसे कि बाद अफराद ये कहते हैं कि अंग्रेजी में गैरत नहीं होती, इसलिए कोई लफ्ज भी नहीं है उसके लिए। आई डोंट नो, एक लाइटर उसके अंदर एक बात की है, इसको कहीं सीरियस ना ले लें आप। अच्छा, अब ये तीनों चीजें हो गई आपके सामने, सखावत शुजात और गैरत। गैरत के मुकाबले पर बेगैरती, सखावत के मुकाबले पर बुखल, शुजात के मुकाबले पर बुजदिली। ये तीनों चीजें बिल्कुल वाज़ह हैं, ठीक है जी। अच्छा, उस जमाने के अंदर जिसको हम जाहिलियत का माशरा कहते हैं, क्या सखावत को बुरा समझा जाता था? जवाब जी नहीं, सखावत को अच्छा समझा जाता था। क्या शुजात को बुरा समझा जाता था? जवाब जी नहीं, शुजात को अच्छा समझा जाता था। क्या गैरतमंद होने को बुरा समझा जाता था? जवाब जी नहीं, गैरतमंद होने को अच्छा समझा जाता था। फिर प्रॉब्लम क्या थे? ये जाहिलों का माशरा है जहां पर मालूम है कि सखावत शुजात गैरत ये तीनों अच्छी चीजें हैं, ये तीनों अच्छी चीजें हैं, मगर इसका एप्लीकेशन कहां पर हो रहा था? विल यू बिलीव, शुजात, हम बहुत बहादुर हैं। दलील क्या है कि आप बहुत बहादुर हैं? का देख लो, जान हथेली पर रखकर हम लोग लूटते हैं लोगों को और उनका माल अपने कब्जे में ले लेते हैं, क्या ये शुजात के बगैर हो सकता है? आप नोट करें, शुजात को वो पेश कर रहे हैं, मगर किस जगह पर? उसका एप्लीकेशन कहां पर हो रहा है? वो कह रहे हम शुजा हैं, बहादुर हैं, हमारी बहादुरी में क्या शुबा हो सकता है? क्या दलील क्या है? कहा कि देखो, इतनी लूटमार जो हम लोग करते हैं जान हथेली पर रखकर, तो क्या ये बहादुरी के बगैर हो सकता है? ये कोई बुजदिल आदमी कर सकता है कि अपनी जान हथेली पर रखकर रात में निकल गया, अंधेरे के अंदर निकल गया, कोई दुश्मन है उसके पास भी कोई असलाह हो सकता है, वो हमारी जान ले सकता है, हमने अपनी जान खतरे में डाल दी। क्या बात गलत है? जान खतरे में डाली, यकीनन यकीनन जान खतरे में डाली, मुकाबले का वक्त आएगा तो लड़ेंगे भी, सही बात है, मगर क्या इस हरकत की वजह से इनको बहादुर कहा जाएगा या दरिंदा कहा जाएगा? सिर्फ जान खतरे में डालना इंसान को बहादुर बनाता है? या जान जब मौका आए अक्ल के मुताबिक और हुक्म खुदा के मुताबिक, उस मौके पर अपनी जान को खतरे में डालना, वो शुजात कहलाता है। वरना तो हर दरिंदा लड़ने के लिए तैयार होता है, मगर हर दरिंदगी को शुजात नहीं कहते। मगर उस माशरे के अंदर आपने नोट किया, वो कहते हैं कि देखो हम अपनी जान खतरे में डालते हैं, लोगों को लूटना, लोगों को कत्ल करना, ये इतनी लंबी लंबी जंगें ये जो होती हैं, क्या ये लंबी लंबी जंगें बगैर बहादुरी के हो सकती हैं? मायार आपने देखा क्या है, लफ्ज अच्छा है, लफ्ज बुरा नहीं है, लेकिन जो उसका एप्लीकेशन है वो कितना गलत है। अच्छा, दूसरे लफ्ज की तरफ आइए, सखावत। हम बहुत जेनरस हैं, हम बहुत ज्यादा सखी हैं। क्या दलील है आपके पास कि आप बहुत सखी हैं, आप बहुत जेनरस हैं? जेनरस होना तो बहुत अच्छा होता है। देखिए, जेनरस वो आदमी होता है कि जो अपने पैसे की परवाह ना करे। हमारे माशरे के अंदर आप देखें, हम लोग जुआ खेलते हैं, गैम्बलिंग करते हैं। जुआ खेलने के लिए दिलगुर्दा चाहिए। अगर जेब में पैसा मौजूद है और निकालने की हिम्मत ही नहीं है, आम जबान के अंदर कहूं तप्पड़ ही नहीं है, तो फिर उसके बाद कोई जुआ कैसे खेल सकता है? हमारा जुआ खेलना दलील है इस बात की कि हम लोग बहुत जेनरस हैं। सिफत बुरी नहीं है, मगर क्या हर मौके पर पैसा निकाल कर फेंक देना, क्या इस्लाम ऐसे शख्स को सखी कहता है? कोई नाइट क्लब में जाए और लाखों रुपए उड़ाकर आ जाए, क्या वाकई ये शख्स सखी है? कहीं जुआ खेलने के लिए जाए और हजारों और लाखों और करोड़ों का जुआ खेलकर आ जाए, क्या ये वाकई इसको सखी कहेंगे? ये सखावत है। हर तरह से किसी भी तरीके से पैसा खर्च कर देना, क्या ये सखावत होती है? या उस मौके पर पैसा खर्च करना कि जहां पर वाकई खर्च करना पसंदीदा हो, कोई उसूल हो कि जिसके मातहत कहा जाए कि हाँ वाकई यहां पर खर्च होना चाहिए था। किसी गरीब की आपने मदद की, किसी गिरते हुए को उठाया, किसी की फीस अदा की है, किस गरीब की, किसी मुस्तहक को आपने उठाया है इस पैसे के जरिए से, किसी के बच्चे की शादी में या बेटी की शादी के अंदर आपने मदद की, क्या वाकई आजादारी की तरवीज के लिए आपने पैसा खर्च किया? तब तो बात समझ में आती है कि हाँ वाकई कुर्बतन इल्लाह इसने इस काम को अंजाम दिया, ये है शख्स सखी और इसका ये फेल सखावत का फेल है, तब तो माना जा सकता है। मगर आप नोट करें कि जो उसूल लिया जा रहा है, उनवान लिया जा रहा है, जो टाइटल लिया जा रहा है वो अच्छा है, मगर फिर आप नोट करें कि उसका एप्लीकेशन कहां पर हो रहा है। جوا کھیلنے جا رہے ہیں یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہم لوگ بہت زیادہ سخی ہیں. کون سی چیز لے جا کر کہاں پر چپکا دی؟ جاہلیت کچھ واضح ہو رہی ہے آپ کے لیے؟ یہ فقط جہالت نہیں ہے, یہ جاہلیت ہے کہ جہاں پر ورق سادہ نہیں ہے, پیج بلینک نہیں ہے کہ جہاں پر آپ جہالت کو علم سے تبدیل کر دیں. تیسری صفت, یہ تین مثالیں جو میں دینا چاہ رہا تھا, تیسری مثال کہ بھائی ہم لوگ بہت غیرت مند ہیں. مطلب غیرت مند ہونا تو بہت اچھی بات ہے, آپ بتائیے آپ کے پاس دلیل کیا ہے آپ کے غیرت مند ہونے کی, غیور ہونے کی, کہ آپ بے غیرت نہیں ہیں, آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ کہ ہمارے پاس دلیل یہ ہے کہ ہم اپنی بیٹیوں کو اپنے ہاتھ سے زندہ دفن کرتے ہیں, یہ ہمارے غیرت مند ہونے کی دلیل ہے. سبحان اللہ, کیا دلیل ہے؟ غیرت مند ہونے کی دلیل کیا ہے؟ کہ ہم اپنی بیٹیوں کو اپنے ہاتھ سے زندہ زمین میں دفن کرتے ہیں. ہم غیرت مند ہیں, ہم پسند نہیں کر سکتے کہ کبھی جنگ ہو, کسی موقع پر ہماری بیٹی کو کوئی اٹھا کر لے جائے اور ہم کو مال غنیمت میں اپنی بیٹی دینی پڑ جائے, ہم پیدا ہوتے ہی اس کو دفن کر دیتے ہیں. یہ ہماری غیرت کا تقاضا ہے. غیرت مند ہونا ایک بہت اچھا عنوان تھا, مگر لے جا کر آپ نے کہاں پر اس کو منطبق کیا, کہاں پر آپ نے اس کو اپلائی کیا, کہاں پر اس کو پلیس کیا, کہاں پر لے جا کر اس کو پیسٹ کر دیا؟ یہ وہ چیز ہے کہ جس کو جہالت سے تعبیر نہیں کیا جائے گا, یہ نری جاہلیت ہے کہ جہاں پر اچھے عنوانات کو لیا جاتا ہے اور غلط کاموں کے اوپر ان کو چسپا کر دیا جاتا ہے. جہالت اور جاہلیت, پیغمبر اکرم کا ایک بہت بڑا جہاد یہ تھا. جہالت کے خلاف جہاد وہ تھا, یقیناً تھا, مگر پیغمبر اکرم کا بہت بڑا جہاد, اس سے بھی بڑا جہاد اس جاہلیت کے خلاف تھا کہ جہاں پر معیارات کو درست کیا گیا, جہاں پر بتایا گیا کہ کس عنوان کو لے جا کر کہاں پر تطبیق کیا جائے گا. یہ جو پیغمبر اکرم یہ کہتے ہیں نا, انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق, کہ مجھے تو بھیجا اس لیے گیا ہے کہ میں اخلاق کو اس کے پرائم کے اوپر پہنچا دوں. یہ اخلاقیات انہی عنوانات کا نام ہے کہ جن کو صحیح جگہ کے اوپر اپلائی کیا جاتا ہے. جو پروردگار عالم یہ ارشاد فرماتا ہے کہ انک لعلی خلق عظیم, کہ اے حبیب آپ اخلاق عظیم کی منزل پر فائز ہیں. خلق عظیم, عظیم اخلاق ہیں آپ کے. یہ اخلاق عظیم انہی عنوانات کو صحیح جگہ کے اوپر اپلائی کر کے دکھانا کہ واقعی سخاوت کیا ہوتی ہے, واقعی شجاعت کیا ہوتی ہے, واقعی بہادری کیا ہوتی ہے, واقعی غیرت کیا ہوتی ہے, واقعی صبر کس کو کہا جاتا ہے, واقعی شکر کس کو کہا جاتا ہے, کس چیز کو صبر کہا جائے گا, کس چیز کو بغیرتی کہا جائے گا, کس جگہ کے اوپر ہتھیار کو نہیں اٹھانا, کس موقع پر ہتھیار کو اٹھا لینا ہے. یہ وہ تمام تر معیارات ہیں, یہ تمام تر وہ اسٹینڈرڈز ہیں کہ جو پیغمبر اکرم کے ذریعے سے اس دنیا کو حاصل ہوئے ہیں. پیغمبر اکرم نے اپنی امت کے اندر اس کو انفورس کر کے دکھایا. اب جو جتنا پیغمبر اکرم سے قریب ہوگا اتنا ہی جاہلیت سے بھی دور ہوگا, جہالت سے بھی دور ہوتا چلا جائے گا.